हमारी दुनिया फॉर क्लास नंबर 5 लेसन नंबर 12 संचार पेज 88। जब हम किसी को कुछ बताते हैं इसे संचार कहते हैं। एक पक्षी जब ची ची की आवाज से दूसरे पक्षी को आने वाले खतरे या फिर कहीं भोजन पड़ा होने की सूचना देता है तो उसे भी संचार कहते हैं। संचार कई चीजें हो सकती हैं। दो लोगों द्वारा मित्रता जताने के लिए हाथ मिलाना, गत दिवस हुई घटनाओं का समाचार पत्र में प्रकाशित होना, छुट्टी का संकेत देनी, स्कूल की घंटी या हमारे द्वारा अपने मित्र को लिखा गया पत्र, यहां तक कि राखी का पतला सा धागा भी संचार का एक रूप है, क्योंकि यह एक भाई को बताता है कि उसकी बहन उसे कितना प्यार करती है। मनुष्य हो या पशु, सभी को संचार की आवश्यकता होती है। इसी के द्वारा हमारे एक दूसरे से संबंध व रिश्ते बनते हैं। संचार के बहुत से रूप हैं। भाषण, हाव भाव, हाथों का प्रयोग करके किए गए इशारे, लेखन, टेलीफोन, टेलीग्राम, पत्र, समाचार पत्र, किताबें और पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, संगीत, सिनेमा, नाटक और आजकल कंप्यूटर पर इंटरनेट, यह सभी संचार के साधन हैं जिनसे हम एक दूसरे से संचार करते हैं। पेज 89। अपने किसी भी बीते हुए दिन पर नजर डालें, यह संचार से भरा हुआ है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जगाने के लिए तुम्हें हिलाया, यह बताने के लिए कि स्कूल जाने का समय हो गया है। तुम्हारे पड़ोसी के घर से आ रही रेडियो की आवाज आपको संकेत देती है कि यदि तुम स्कूल के लिए देरी नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से नहा लो। समाचार पत्र तुम्हारे पिता को यह सूचित करता है कि कल कई लोग ट्रैफिक जैम में फंस गए। तुम्हारे स्कूल की वर्दी से सबको पता चल जाता है कि तुम किस स्कूल में पढ़ते हो। तुम्हारी मौसी द्वारा किए गए फोन से तुम्हें पता चल जाता है कि वे कल तुम्हारे घर आ रही हैं। बस स्टॉप पर लगा विज्ञापन का बोर्ड तुम्हें बताता है कि दंत मंजन निर्माता ने एक और स्वाद का दंत मंजन बेचना शुरू किया है। सब्जी बेचने वाले की ऊंची आवाज से तुम्हें पता चल जाता है कि अब प्याज का भाव बढ़ गया है। शाम को टेलीविजन पर आ रहे कार्यक्रमों के चित्र तुम्हें दुनिया भर की घटनाओं की खबरें देते हैं, चाहे युद्ध हो या क्रिकेट मैच। तुम्हारे बचपन के पहले रोने के साथ ही संचार की कहानी शुरू हो जाती है। तुम्हारे रोने से ही तो तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरतों का पता चलता था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह अपने आसपास के लोगों से भाषा सीखता है। गू गू, गा गा की आवाज मा मा, पा पा में बदल जाती है। जिस प्रकार से एक स्पंज पानी सोखता है उसी प्रकार से एक गिरते पड़ते चलने वाला छोटा सा बच्चा कुछ ही समय में कितने सारे शब्द बोलना सीख लेता है। जब तक वह तुम्हारे जितना बड़ा हो जाता है वह वर्णों से लेकर लंबे लंबे निबंधों तक सब कुछ लिख सकता है। पेज 90। संचार का विकास इसी प्रकार हुआ है। हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले जो आवाज निकाली वह खुशी या दर्द की थी। युद्ध में योद्धाओं की चीखें और जानवरों का शिकार करने के लिए शिकारियों द्वारा जानवरों की आवाजें थी। उस समय यही संचार का माध्यम थी। तब वर्ण नहीं थे। लोग संदेश भेजने के लिए चित्रों का प्रयोग करते थे। सबसे पहली गुफा चित्रकारी लगभग 40,000 वर्ष पुरानी है। यह ऑस्ट्रेलिया, नाम्बिया और फ्रांस में पाई गई है। फ्रांस में लेस्को में पाए गए गुफा चित्र लगभग 20,000 वर्ष पुराने हैं। इनमें शिकार के रंगीन चित्र दर्शाए गए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चित्र शिकारियों के हित के लिए बनाए गए थे। अब लिखित शब्द मानव चित्रों से वर्णों तक कैसे पहुंचा? चित्रात्मक शब्दों की समस्या यह थी कि वह संख्या में बहुत अधिक थे, जिन्हें याद रखना कठिन था। इस समस्या को सुलझाने के लिए मनुष्य ने अलग अलग ध्वनियों के लिए अक्षरों का आविष्कार किया। कुछ ही अक्षरों को जोड़कर कई शब्द बनाए जा सकते थे। यह हमारे पहले वर्ण थे। सुमेर वासियों ने लिपि का आविष्कार किया। उन्होंने इसका इस्तेमाल मंत्रों का लेखा जोखा और व्यापारिक हिसाब रखने के लिए किया। वे सरकंडे से इस लिपि को चिकनी मिट्टी पर लिखते थे और इन पट्टियों को धूप में सुखाते थे। पेज 91। सिंधु नदी के पास हड़प्पा सभ्यता में भी मिट्टी की पट्टियों पर इसी प्रकार की लिपि पाई गई है। प्राचीन मिश्र में लिखित भाषा ऐसी थी कि प्रत्येक चित्र का संबंध किसी न किसी विचार या ध्वनि से था। प्राचीन चीन की लिपि लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। इसका प्रत्येक अक्षर किसी विचार का द्योतक था, जैसे कि पेड़, चांद या सूर्य। क्या तुम जानते हो कि भारत और यूरोप की अनेक भाषाओं का स्रोत एक ही है? उदाहरण के तौर पर विभिन्न भाषाओं के कुछ शब्द एक जैसे ही ध्वनि से उत्पन्न है, जैसे कि राजा शब्द के लिए लैटिन भाषा में रेक्स, भारतीय भाषाओं में राजा, इटालियन भाषा में री, फ्रेंच भाषा में राय, स्पेनिश भाषा में रे है। मूल भाषा को इंडो यूरोपियन भाषा का नाम दिया गया है। संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, बिहारी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, असमिया, बंगला, उड़िया, पहाड़ी और कश्मीरी भाषा का उद्गम इसी मूल भाषा से हुआ। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी दक्षिण भारतीय भाषाओं का उद्गम द्रविड़ नाम की मूल भाषा से हुआ। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय आदि की भाषाओं का संबंध सिनो तिब्बती भाषा समूह से है। चूंकि पहली लिपि के 3000 वर्ष से भी अधिक बाद कागज का आविष्कार हुआ, लोग मिट्टी की पट्टियों, पत्थर या लकड़ी पर ही संदेश तराशा करते थे या पेपिरस के तनों की पट्टियों पर लिखते थे। पेज 92 अभ्यास 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क, संचार क्या है? ख, अपने दैनिक जीवन में संचार के 5 उदाहरण दीजिए। 2, प्रथम अक्षर का उद्गम कैसे हुआ? 3, निम्नलिखित भाषा को उसके भाषा समूह के साथ मिलाएं। बाएं तरफ भाषा है हिंदी, फिर स्पेनिश, उसके नीचे तमिल, उसके नीचे मणिपुरी और दाएं तरफ है नंबर 1 द्रविड़, 2 सिनो तिब्बती, 3 इंडो यूरोपियन और 4 यूरोपियन। जरा इसमें भाषा को उसके भाषा समूह से मिलाएं।